मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 6 दिसंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और कल हम लोग विचारों में बदलाव कैसे लाएं इस इशू पर बात कर रहे थे और उस इशू के अंतर्गत मैंने किताबों की बातें की थी कि किस तरीके से किताबें मुझे लगता है कि हमारे विचारों में बदलाव लाने के सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में मैंने ठीक उससे पहले जो मैंने चेखव साहब की कहानी आप लोगों को सुनाई थी उसके माध्यम से भी समझाने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि किताबों की बात को मुझे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूं फ्रेंड्स कि शायद सबसे अच्छी आपकी जो मित्र हो सकती हैं, जो शुभचिंतक हो सकते हैं या जो सत्संग के आधार हो सकते हैं वो किताबें ही होती हैं। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि हो सकता है कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हों जहां बहुत सोच समझ और विचार रखने वाले लोग नहीं हों, बहुत अच्छा आपको सांस्कृतिक और दूसरे कार्यक्रम देखने को न मिलते हों, बहुत अच्छे व्याख्यान सुनने को न मिलते हों, आप जंगल में हैं तो आप अकेले हैं, रेगिस्तान में हैं तो आप अकेले हैं, पर्वतों की चोटियों पर भी हैं तो आप अकेले हैं, सफर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अकेले महसूस कर रहे हैं, घर में हैं तो हो सकता है आप अकेले हों, लेकिन किताबें ऐसी जगह हैं जहां हर जगह आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, दूसरी चीजों को आप लेकर नहीं जा सकते। इस बारे में मैं जो हमारे लोकमान्य तिलक हैं उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है उसका यहां स्मरण कराना चाहूंगा। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि मैं बिना किताबों के स्वर्ग में रहने की बजाय किताबों के साथ नरक में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। कहने का मतलब यह कि यदि आप मुझे स्वर्ग भेज रहे हों और कहें कि नहीं आप किताबें नहीं ले जा सकते तो मैं वहां नहीं रहना चाहूंगा। हां, यदि आप मुझे नरक भेज दें लेकिन किताबों के साथ तो मैं नरक में रहना पसंद करूंगा। तो दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए यहां स्वर्ग और नरक की बात नहीं है, वो कहना यह चाह रहे हैं कि किताबों के साथ मुझे नरक में भेज दो, मेरे विचारों में इतनी ताकत आ जाएगी, मेरे विचारों में इतना परिवर्तन आ जाएगा कि मैं उस नरक को ही स्वर्ग में तब्दील कर दूंगा, या यूं कह लीजिए कि उस नरक में ही मैं स्वर्ग की अनुभूति कर लूंगा, स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अगर आपने बिना किताबों के मुझे स्वर्ग में भेजा तो हो सकता है कि चूंकि किताबें नहीं होंगी तो मेरे विचारों की ताकत भी मेरे साथ नहीं होगी, मेरे विचारों में समय और जरूरत के हिसाब से तब्दीलियां नहीं आ पाएंगी, तो मैं उस स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा, फिर मैं स्वर्ग में रह करके भी नरक का जीवन जीऊंगा। तो देखिए, यहां किताबों के अर्थ को थोड़ा आपको दूसरे संदर्भों में समझना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि मैंने महसूस किया है कि जब किसी को भी किताब पढ़ने का सजेशन आप दीजिए, किताब पढ़ने के लिए कहिए, तो उनके दिमाग में क्या आता है, अब बात आती है वो किताबें जो उन्होंने अपने एजुकेशन के टाइम में पढ़ी हैं, भूगोल, इतिहास, गणित, केमिस्ट्री, और उनसे वो भयभीत रहते हैं। पहली बात, वो जानते ही इस बात की कल्पना नहीं कर पाते या कह लीजिए कि सोच नहीं पाते कि यार किताबें इनसे हटकर भी कुछ हैं, और जो हटकर है वही सही मायने में किताबें हैं। ये तो टेक्स्ट बुक कही जाती हैं, याद रखिए, ये बुक्स नहीं कही जाती, ये टेक्स्ट बुक कही जाती है या सिलेबस की किताबें कही जाती हैं। इनसे हटकर जो किताबें होती हैं वो दुनिया की किताबें होती हैं। दूसरा दिमाग में क्या हवा बैठा हुआ है कि जब हम क्लासेस के लिए पढ़ रहे होते तो पास होने के लिए पढ़ रहे होते हैं, हमें परीक्षा में पास होना है, परीक्षा में पास अगर होना है तो बट नेचुरल कि कुछ चीजें हमें रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, और रटने और याद करना और फिर उसको लिखने का तनाव तो बहुत ज्यादा होता है, फिर उसके परिणाम आएंगे, हम पास होते हैं या फेल होते हैं, पास भी होते हैं तो कितने परसेंट मार्क्स आते हैं, तो उसका तनाव दिमाग में रहता है। तो जब किसी से कहा जाए कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ताउम्र पढ़नी चाहिए, तो उनके दिमाग में एकदम वो जो आतंक है एजुकेशनल प्रोसेस का वो आ जाता, अरे बाप रे, नहीं नहीं भैया, वो बहुत भयानक दौर था, हम उस दौर को वापस नहीं लाना चाहते, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। मित्रों, वो दौर गुजर गया, अब उस दौर का कोई अर्थ यहां नहीं है। अब तो एक नए तरीके के जिंदगी की शुरुआत हो गई है। उस नए तरीके के जिंदगी की शुरुआत में बहुत जरूरी है कि नई शुरुआत के लिए हमारे पास नए विचार हों, और उन नए विचारों में किताबें हमारी सबसे अधिक मदद करती हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको पहली बात बताई, और मैं आइए अब दूसरे पॉइंट्स, दूसरे तरह के बिंदुओं पर आता हूं। देखिए, एक बात यह भी कही जाती है, हम सत्संग की बात करें, कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक अच्छे लोगों का साथ नहीं होगा, तब तक आप में विवेक नहीं आ सकता। विवेक का मतलब है विजडम, जहां आप सही और गलत का फर्क कर सकें, और फर्क करने के बाद सही के रास्ते पर चल सकें, यह विवेक है। और सत्संग के बारे में यही तुलसीदास क्या कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, यानी कि बिना हरि की कृपा के, ईश्वरीय कृपा के संत नहीं मिलते हैं। यानी कि संत के मिलने के लिए जरूरी है कि ईश्वरीय कृपा हो, और संत याद रखिए वो सत्संग ही है। संतों का साथ यानी कि सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, और संत अच्छे लोगों में होते हैं। यहां मैं आया ये बात कह दूं कि आप बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम तो चलिए चुपचाप बैठ जाते हैं, जिस दिन भगवान की कृपा होगी, अच्छे लोग मिल जाएंगे, तब ठीक है, देखेंगे, नहीं तो अभी तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, जैसा है वैसा चलने दे। नहीं, वो महत्व बता रहे हैं कि सत्संग का कितना महत्व है। ये मतलब वो नहीं कह रहे हैं कि आप चुपचाप बैठ जाइए, ढूंढिए, अच्छे संगत लाइए, या अगर आपको किसी संगत से परेशानी हो रही है, आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, उस वातावरण को गलत समझ रहे हैं, तो वहां से अपने को अलग कीजिए। और अगर आप अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो देखिए यह इस बात का प्रमाण है कि आपको वहां अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है। ये बात अलग है कि जब आप दूसरों से बात करते हैं तो इनकी शिकायत करते हैं, नहीं नहीं मेरे साथ तो ये दिक्कत है, वो लोग भी अच्छे नहीं है, और मैं कहां फंस गया हूं। अरे फंस क्या गए हैं, आपको कोई बांध करके नहीं रखे हुए, आप वहां से निकलिए ना। फिर जब निकलने की बात होगी, नहीं नहीं अब कैसे निकलेंगे, वो सब ये हैं वो हैं, वहां तो सब रोजगार है, खाना पीना वहीं होता है, पेट वहीं से चल रहा है, कैसे छोड़ करके जाए। नहीं, इसका मतलब है कि आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। मित्रों, ये बात सुनने में थोड़ी सी कड़वी सी लगती है, लेकिन जिंदगी की ये बहुत कड़वी सच्चाई है। तो सत्संग का जो महत्व है, उसमें ढेर सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। व्यक्ति भी सत्संग है, किताबें भी सत्संग है, वातावरण भी सत्संग है, अगर आप कलाओं से जुड़े हुए नाटक देख रहे हैं तो भी सत्संग है, अच्छी फिल्में आप देख रहे हैं तो भी सत्संग है, और ये हमारे विचारों को बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, एक बात तो मैं यहां जोर देकर करना चाहूंगा कि जहां भी आपको नकारात्मक विचार सुनने को मिले, आपको तुरंत वहां से छिटक जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। देखिए, नकारात्मक विचार का मतलब क्या है, मान लीजिए कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जो मंडली है, जो बैठी हुई मंडली है, मतलब लोगों का समूह है, ये कुछ लोगों की आलोचना कर रहा है, सिर्फ आलोचना कर रहा है। तो मान करके चलिए कि ऐसी जगह पर निंदा हो रही है, जहां आलोचनाएं हो रही हैं, जहां काय काय तू 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 मैं हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन जगहों पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। और नकारात्मक ऊर्जा की विशेषता यह होती है कि उनकी आकर्षण शक्ति बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है, यानी कि वो नकारात्मकता को इतनी तेजी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसे आप कह सकते हैं एक तरह का ये ब्लैक होल है, अपने बगल से किसी चीज को गुजरने ही नहीं देती, अपनी तरफ खींच के अपने में मिला लेती है। इसीलिए आप देखेंगे कि नकारात्मकता की तरफ सबसे ज्यादा लोग भागते हैं, सबसे ज्यादा भागते हैं। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको जरा भी आप महसूस हो कि यहां नकारात्मकता, जैसे देखिए अभी ठंड के दिनों की शुरुआत हो गई है, आप पाएंगे कि गांव के लोग या शहर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव से आए हुए हैं, रहते हैं, तो बेचारे गरीब हैं, ठंड के दिनों में उनके पास रजाई नहीं है या उस तरह से स्वेटर नहीं है, तो क्या है कि वो लकड़ी घास फूस इकट्ठी करके जला देते हैं, तो वो लकड़ी थोड़ी सी गीली होती है तो धुआं उठता है। तो देखिए, लकड़ी बहुत दूर से जल रही है, लेकिन उस धुएं का जो कसैलापन है आपको यहां महसूस हो जाएगा, कसैलापन दूर तक वो कसैलापन सुनाई देता है, सूंघने में आता है। नकारात्मक विचार भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप संवेदनशील हैं तो नकारात्मकता को बहुत दूर रह करके भी आप महसूस कर लेंगे। हर हालत में आपको चाहिए कि आप उससे बचें, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, क्योंकि एक नकारात्मकता दूसरे नकारात्मकता को जन्म देता है, दूसरा नकारात्मकता तीसरे नकारात्मकता को जन्म देता है, और इस तरीके से लगातार आप नकारात्मकता के चंगुल में उलझते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे मकड़ी खुद के लिए जाला बनता है और बड़ा खूबसूरत स्वरूप बनाता है। कभी मकड़ी के जाले को देखिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद पाएंगे कि वो जो मकड़ी थी जिसने खूबसूरत जाला बुना था, उसी जाला में उलझ करके दम तोड़ चुकी है। उसी जाले वही जाला उसके लिए जी का जंजाल बन जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। नकारात्मक विचार मित्रों ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों, चूंकि अब वक्त हो चुका है और महत्वपूर्ण बातें मैं आप सबसे शेयर कर चुका हूं, अगर आप लोगों को कुछ और इस पर प्रश्न पूछने हो तो आप ईमेल के जरिए मुझे सूचित कर सकते हैं। अब कल इस पर या दूसरे विषय पर हम लोग बातें करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।